आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। अल्बनीजी सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑस्ट्रेलियाई प्रसारकों को उनके समाचार कंटेंट के लिए मुआवजा देना अनिवार्य किया जाएगा। प्रस्तावित न्यूज बार्गेनिंग इंसेंटिव के तहत अगर कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, गूगल या टिकटॉक प्रकाशकों के साथ बातचीत करने से इनकार करता है या समाचार सामग्री को हटाता है तो उसे फिर भी उस सामग्री के लिए भुगतान करना होगा। ये योजना सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की राजस्व पर टैक्स लगाएगी, चाहे वे समाचार सामग्री होस्ट करें या नहीं। इस टैक्स को हटाया जा सकता है अगर वे समाचार प्रकाशकों को मुआवजा देने के लिए समझौता करने पर सहमत हो जाएं। इससे पहले इस साल मई में फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने घोषणा की थी कि वे अगले साल यानी 2025 से ऑस्ट्रेलियाई समाचार के लिए भुगतान को पूरी तरह से बंद कर देगी। संचार मंत्री मिशेल रोलैंड का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारिता का फायदा तो उठाएं लेकिन अपना उचित हिस्सा ना चुकाएं। दूसरी ओर मेलबर्न यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर निकोला फिलिप्स ने कैंपस में कथित यहूदी विरोधी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का बचाव किया है। ये बयान उस समय आया है जब एक संसदीय जांच इस विषय पर साक्ष्य सुन रही है जिसका उद्देश्य गाजा पर इजराइल के विनाशकारी हमले के कारण भड़के पैलेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनों को रोकना है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी विशेष रूप से छात्र शिविरों का केंद्र रही है जहां विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय के उन हथियार कंपनियों से संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हो रहे हैं जिनका संबंध इजराइल से है। यहूदी लेबर सांसद जॉर्ज बर्न्स इस जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने वाइस चांसलर फिलिप्स से प्रदर्शनों के बारे में सवाल किया जिसमें हाल की एक घटना भी शामिल है जहां छात्रों ने एक यहूदी अकादमिक के कार्यालय पर कब्जा कर लिया और उनका नंबर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। वहीं पूर्व लिबरल राज्य सांसद को बाल यौन शोषण के गंभीर आरोपों को लेकर अदालत में पेश होने के बाद उनकी जमानत शर्तों में एक बार की छूट दी गई है। रॉड्रिक एमन पर 2017 में सिडनी के नॉर्दर्न बीचेस पर एक किशोर लड़के के साथ कई बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। आरोप सार्वजनिक होने के बाद उन्होंने अगस्त में संसद से इस्तीफा दे दिया था। 35 वर्षीय पूर्व सांसद जो नॉर्दर्न बीचेस के पिटवाटर सीट का प्रतिनिधित्व करते थे आज यानी 12 दिसंबर को सिडनी के डाउनिंग सेंटर लोकल कोर्ट में पेश हुए। वे चुपचाप अदालत के पीछे बैठकर अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने अब एमन की जमानत शर्तों में एक मामूली बदलाव पर सहमति जताई है जिसके अनुसार उन्हें 29 दिसंबर को केवल एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पुलिस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मामला अब 27 फरवरी को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। यदि आप या आपका कोई परिचित यौन उत्पीड़न पारिवारिक या घरेलू हिंसा के बारे में बात करना चाहते हैं तो 1-800-RESPECT पर 1-800-737-732 को कॉल करें या फिर आपातकालीन स्थिति में 000 पर कॉल करें। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दूसरे महाभियोग वोट का सामना करते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला किया है। राष्ट्रपति यून ने पिछले सप्ताह 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित करने के अपने चौंकाने वाले निर्णय का बचाव किया है जबकि दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हान डोंग हून ने राष्ट्रपति को तुरंत उनके कर्तव्यों से निलंबित करने की मांग की है। श्री हान का कहना है कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद महाभियोग के लिए मतदान करें लेकिन राष्ट्रपति यून का कहना है कि मार्शल लॉ का निर्णय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक था क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उत्तर कोरिया ने देश के चुनावों को हैक किया हो सकता है। राष्ट्रपति यून को शनिवार यानी 14 दिसंबर को दूसरे महाभियोग वोट का सामना करना है जबकि पहला वोट पिछले सप्ताह असफल हो गया था क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकांश सांसदों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। और अंत में खबरें भारत से। आज यानी बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी जताई। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्संस कल्याण बोर्ड बनाया जाना। इसके अलावा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को अब एक समान पर्ची बनाने से लेकर बेड और एम्बुलेंस का एक ही समान शुल्क देना होगा। उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट अधिनियम 2019 की धारा 22 एवं ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020 की धारा 10 के अंतर्गत उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्संस कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने पर भी मंजूरी जता दी गई है। इसी के साथ 12 दिसंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। डीजे वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।